ओम शांति। आज सवेरे बाबा की मुरली हम सभी ने सुनी और बाबा ने इसी विषय के ऊपर, बाबा ने कहा तुम्हें नशा होना चाहिए कि कौन तुम्हें पढ़ाता है, किसके सामने तुम बैठे हो। ज्ञान सागर के ज्ञान वर्षा से ही हम पावन बन करके अपने बड़े घर चलते हैं बड़े बाबा के साथ। और कहा जैसे जैसे अंतिम नजारे विनाश के सामने दिखने लगेंगे, हंगामे होंगे, तो तुम्हारी बहुत वृद्धि होगी और ये निश्चय का फाउंडेशन और भी मजबूत हो जाएगा। ब्राह्मण जीवन के अगर देखे तो चार फाउंडेशन माने गए हैं। पहला फाउंडेशन है ज्ञान योग का फाउंडेशन, जो निरंतर हमें अंदर से पक्का करते जाना है, क्योंकि माया इसी फाउंडेशंस को हिलाने का प्रयत्न करती है। जो भी वीक फाउंडेशन होगा उसको जरूर हिलाने का प्रयत्न करेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो और निरंतर याद का अभ्यास बनाते चलो। कोरोना के समय ये वरदान भी साधनों का हुआ कि हमें घर बैठे रोज मुरली सुनने को मिली है ना। ज्ञान योग हमारा निरंतर चलता रहा, कभी मुरली मिस नहीं हुई, क्योंकि YouTube पर रोज बाबा की मुरली हम सुन लेते थे। लेकिन जैसे कहा जाता कि माया अपना अंतिम दांव तो चलेगी जाने से पहले, तो कहीं यही जो सुविधा साइंस ने बनाकर दी, क्या माया ने उसका एडवांटेज तो नहीं ले लिया कि अब जब सब कुछ खुल गया उसके बाद भी हम सोचते हैं कि नहीं इसी पर मुरली सुनो, इसी के साथ योग करो, अब सेंटर जाने की क्या जरूरत है। समझ लेना ये भी सूक्ष्म माया का वार है। बाबा के घर से आपका हाथ छुड़ाने का प्रयत्न है, क्योंकि टेलीविजन द्वारा या YouTube द्वारा जब मुरली सुनते हैं बाबा के महावाक्य मिल जाते हैं, वो वाइब्रेशन नहीं मिलते जो बाबा के घर से मिलते हैं। और इसीलिए वो वाइब्रेशन में ही ताकत है। मुरली तो आधी गई अंदर, आधी नहीं भी गई, कुछ शब्द मिस भी हो गए, लेकिन बाबा के घर में जाकर के जब बाबा के कमरे में बैठते हैं जहां निरंतर योग अभ्यास चलता रहता है, तो वहां से वो ताकत भी मिलती है। संग हमें श्रेष्ठ मिलता है, जब ब्राह्मणों के बीच में हम जाते हैं तो वो संघ का भी बल मिलता है, संगठन का बल मिलता है, जो YouTube द्वारा नहीं मिलता है। इसलिए सावधान, क्योंकि माया यही ज्ञान योग का फाउंडेशन हिलाने का प्रयत्न करती है। दूसरा फाउंडेशन है पवित्रता का फाउंडेशन, और इसीलिए देखा जाता है कि जैसे जैसे अंतिम समय नजदीक आता जाएगा, बाबा की मुरलियों में बाबा हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पवित्रता के धारणा करा रहा है। लेकिन जब बच्चे के अंदर वो शक्ति नहीं रहेगी ज्ञान योग की, तो पवित्रता का फाउंडेशन भी हिलना स्वाभाविक है। जिन संस्कारों को हमने अंदर दबा के रखा है और सोचा है कि हम तो विजयी हो गए हैं इस संस्कार के ऊपर। लेकिन जो दबे हुए संस्कार हैं, माया वही प्रयत्न करती है उन संस्कारों को पुनर्जागृत करने का, और अंतिम समय वही संस्कार उभर के सामने आ जाते हैं और हमें धोखा मिलता है कि अरे मैंने तो समझा था मैंने इस संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। इसीलिए इस धोखे से भी अपने आप को बचाना है। और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्यूरिटी की बात बाबा करते हैं, उस फाउंडेशन को जितना हो सके मजबूत करते जाए। तीसरा फाउंडेशन है निश्चय का फाउंडेशन, क्योंकि माया अंतिम समय ये निश्चय हिलाने का ही प्रयत्न करेगी, और उसमें भी चारों प्रकार के निश्चय होना बहुत आवश्यक है। अगर निश्चय बुद्धि नहीं तो ना वो नशा चढ़ता है और ना उस निशाने तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि होना अंदर से उमंग उत्साह के पंख, हिम्मत के पंख को डेवलप करना, विकसित करना। जो पंख कटे हुए हैं, जो पंख टूटा हुआ है, निश्चय बुद्धि होते हैं तो एकदम हिम्मत और उमंग उत्साह के साथ ऊंची उड़ान भरना आसान हो जाता है। और उस निशाने, निशाना कौन सा है हमारा? संपूर्णता का निशाना, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, उस निशाने तक भी पहुंचना आसान हो जाएगा। और चौथा फाउंडेशन है अनुभव का फाउंडेशन, क्योंकि अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं, अनुभवी सहज विजयी हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन के ये चार फाउंडेशन है, ज्ञान योग का फाउंडेशन, पवित्रता का फाउंडेशन, निश्चय का फाउंडेशन और अनुभव का फाउंडेशन। उसमें महत्वपूर्ण जो है, जिसके ऊपर माया बार बार अटैक करती है और इतने सूक्ष्म तरीके से आती है, जिसका होश भी कभी हमें नहीं रहता है, वो है निश्चय का फाउंडेशन। निश्चय किसको कहा जाता है? आप सभी कहने में तो कह देंगे कि हाँ बाबा में निश्चय, तभी तो हम यहां आए। बाबा में निश्चय है, ज्ञान में निश्चय है, तभी तो हम बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। लेकिन निश्चय की परिभाषा, निश्चय माना सबसे पहली बात जहां कोई प्रश्न न हो। जैसे बाबा की अव्यक्त मुरली हम सभी ने संडे को सुनी, बाबा कहे कि जब कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है उसके पहले आपको जवाब मालूम है, ड्रामा नथिंग न्यू। इसलिए प्रश्न उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्यों, क्या, कैसे, कहां, ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्रामा का संपूर्ण नॉलेज हम बच्चों को बाबा ने दिया है। तो प्रश्न कहां भी मालूम है, अगर कुछ भी होता है तो क्यों क्या नहीं, लेकिन फुल स्टॉप बिंदी लगाओ, बाबा ने कहा इसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है। तो जहां जिज्ञासा वश कोई प्रश्न होता है वो बात अलग होती है, लेकिन वैसे बाबा ने ज्ञान से संबंधित हर बात का जवाब हमें दिया है। और फिर भी अगर कोई जिज्ञासा वश प्रश्न है जानने के हिसाब से, तो बाबा की मुरलियों में दूसरे दिन हमें वो उसका जवाब मिल ही जाता है। तो प्रश्नात्मक बुद्धि नहीं, निश्चय बुद्धि मना फुल स्टॉप बुद्धि, प्रश्नात्मक बुद्धि नहीं। दूसरा, निश्चय बुद्धि माना शक नहीं, डाउट्स नहीं, पता नहीं ऐसा किया तो ऐसा ना हो जाए, पता नहीं ये बात कही तो ऐसा तो नहीं समझ लिया जाए, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। जहां पता नहीं आया माना निश्चय बुद्धि नहीं है। निश्चय बुद्धि आत्मा माना उसको हर बात पता है। पता नहीं ये डाउट्स नहीं आ सकता है। तीसरा निश्चय बुद्धि माना जहां दुविधा न हो, कंफ्यूजन न हो, ये करे या ये करे, ये करना सही है ऐसा करना सही है, जहां ये दुविधा आती है, मूंज है अंदर, कंफ्यूजन है, तो उसको निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि माना निश्चित भविष्य को जानते हुए निश्चिंत रहने वाले। तो दुविधा न हो, शक न हो, निश्चय बुद्धि माना जहां कोई भी प्रकार का भय न हो, निडर, निर्भय। इसलिए भगवान की महिमा में भी एक आता है निर्भय, निर्वैर। जहां हजार भुजा वाला बाबा मेरे साथ है और मुझे ये निश्चय है, तो भय किस चीज का? बाबा कहे अगर अक्षौणी सेना भी आपके सामने आ जाए और आप अकेले हो, तो भी याद रखो कि हजार भुजा वाला बाबा आपके साथ है, आपकी विजय निश्चित है। क्योंकि सत्यता की शक्ति है अंदर। जहां सत्यता की शक्ति है तो निर्भय है, निर्वैर है, ये निश्चय बुद्धि। पांचवी बात, निश्चय बुद्धि माना व्यर्थ जीरो। जो सोच चले वो निश्चय बुद्धि के कारण जैसे समर्थ। अगर हमारे मन के अंदर व्यर्थ की कंप्लेन है, व्यर्थ बहुत चल रहा है, तो व्यर्थ हमारे निश्चय के फाउंडेशन को कमजोर करता है, हिलाता है, इसलिए ये हिल नहीं सकता है और न टेंशन क्रिएट कर सकता है। व्यर्थ चलेगा तो टेंशन भी होगा। निश्चय बुद्धि माना जहां टेंशन नहीं, क्योंकि ड्रामा की इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, तो हम ड्रामा के ज्ञान को, आदि मध्य अंत को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो फिर वहां हमारा निश्चय कमजोर कैसे हो सकता है? इन सब बातों के आधार पर अगर चेक करें कि क्या मेरा निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है, क्योंकि अभी माया अंतिम दांव में जब आएगी तो यही निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करेगी, कमजोर करेगी, और ये सूक्ष्म तरीके से आती है तो पता ही नहीं चलता है। तो चारों बातों में निश्चय, स्वयं में भी निश्चय, बाबा में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय और परिवार में भी निश्चय। अभी माया का आने का स्वरूप कौन सा है? माया का आने का स्वरूप कौन सा है? माया भगवान का रूप धारण करके आएगी, आ रही है। भगवान का आवाज निकाल करके आएगी और निश्चय के फाउंडेशन को हिलाएगी। शास्त्रों में कथा है, आप लोग ने पता नहीं सुनी होगी, याद होगा, शास्त्र में एक बहुत सुंदर इसी बात पर कथा है। आपने सुना होगा पौंड्रिक की कहानी। शास्त्र में पौंड्रिक नाम का एक असुर था, लेकिन उस असुर के पास ऐसी शक्ति थी कि वो जो रूप धारण करना चाहे वो रूप धारण कर सकता है। और इसीलिए कहा जाता है शास्त्र में, जब श्री कृष्ण कहीं बाहर गए द्वारका से कोई कारणवश, तो उसी समय पौंडरिक वहां आ जाता है और द्वारकाधीश का रूप धारण करके वो वहां बैठ जाता है उसकी गद्दी पर। और जब असली कृष्ण आता है तो कहता है कि ये फ्रॉड है, और लोगों भी क्योंकि सारी एक्शन उसके जैसी, बात उसके जैसी, आवाज उसके जैसा, तो स्वयं द्वारका के लोग भी द्वारकाधीश को पहचान नहीं सके। ये शास्त्रों में कथा है, इसलिए सावधान। आज भी ऐसा पौंडरिक आएगा और आपके निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करेगा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, उनके पीछे जाना चाहिए। अरे बाबा आता है, बाबा आता है, देखो बाबा जैसा ही आवाज है, बाबा जैसे ही ज्ञान सुनाते हैं, हाँ? जाना चाहिए। सबसे बड़ी परख क्या है? परख शक्ति के ऊपर अव्यक्त इशारे चल रहे हैं। पहचान क्या है? क्योंकि पहचान परख शक्ति बहुत पावरफुल चाहिए, नहीं तो धोखे में आ जाएंगे और निश्चय का फाउंडेशन हिल जाएगा। अंतिम समय चल रहा है और निश्चय का फाउंडेशन ही हिल गया तो अंत मते सो गति क्या होगी? सोचने की बात है। पहचान क्या है? बाबा की अभी 12 तारीख की, परसों जो संडे आ रहा है, उसकी उस मुरली में आप सुनेंगे 91 के बाबा के मधुर महावाक्य है। मैं उस मुरली को पढ़ रही थी और मन में आया कि आप सभी शायद रास्ते में होंगे और सुनेंगे उस मुरली को। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि बाबा ने साकार में मधुबन की धरनी को अपनी योग की शक्ति से सींचा है, अपने कर्मों से सींचा है। अनेक भाई बहने जो पवित्र ब्राह्मण आते हैं, वो पवित्र ब्राह्मण जहां तपस्या करते हैं तो उस तपस्या से उस धरनी को सींचा है, इसीलिए इस धरनी को वरदान है, बाप और बच्चों के मिलन का वरदान है ना? आप सभी को मालूम है कि आप जब भी मधुबन आते हो तो बहने फॉर्म भरती है और यहाँ फॉर्म भेजती है धारणा का। इतना समय से पवित्रता की धारणा है, खान पान की धारणा है, सारे नियम मर्यादा कहाँ तक है, भाई रोज क्लास में आते है कि नहीं आते, वो सारा फॉर्म भर करके भेजती है। मालूम है ना सभी को? और उसमें बाबा हमेशा पवित्रता की धारणा के ऊपर बहुत जोर देते रहे। साकार मुरलियों में भी कई बार आपने सुना है कि ये इंद्र सभा है और इस इंद्र सभा में कोई भी अपवित्र नहीं आ सकते हैं। बाबा कभी कोई अपवित्र आत्मा से मिलता नहीं है और इसीलिए हमेशा कहते हैं अगर कोई ब्राह्मणी भी कोई अपवित्र व्यक्ति को लेकर के आई तो वो स्वयं ही उस कर्म से श्रापित हो जाते हैं। यहाँ तक बाबा ने इस इंद्र सभा का महत्व बताया है और इसीलिए बाप और बच्चे का मिलन का स्थान यही है। अब जहां पर पौंडरिक आता है, पौंडरिक तो नगर नगर गांव गांव घूम रहा है ना? और फिर कह दिया वही मधुबन है। मधुबन की महिमा को भी गलत तरीके से बता दिया ताकि लोगों का निश्चय टूटे। इसलिए कहा कि वही मधुबन है, अरे उस धरनी को न पवित्रता की शक्ति से सींचा गया है। जो क्लास में आ रहा है उनको न पूछा जा रहा है कि भाई आपकी पवित्रता की धारणा कहाँ तक है। जिनके घर में जाकर के रहते, सेंटर तो है नहीं, जिनके घर में जाकर के रहते हैं क्या उनके बहु बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, उनका घर में वो पवित्रता है, नहीं है। और उस सभा में भी जो धारणाओं पर चल रहा है नहीं चल रहा है वो जाकर के बैठते हैं, बाबा के मिलन मना रहे हैं, बाबा से मिलन मना, वहां तो हमें फॉर्म भरना पड़ता है, यहाँ कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। यही सबसे बड़ी पहचान है कि जिस शक्ति के बारे में ब्रह्मा बाबा ने भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कहा जाता है कि कराची के अंदर जब बाहर वाले बाबा के पास आए कि बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, हम सब आपके साथ हो जाएंगे, सिर्फ आप ये पवित्रता की बात निकाल दो तो हम सब आपके साथ हैं। ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो शिव बाबा आकर के कह रहा है कि पवित्र बनो। और दुनिया के अंदर कई लोग कुमार कुमारी रहते हैं, शादी नहीं करते हैं, लेकिन पवित्र नहीं रह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप चलता है उनका, पवित्र नहीं रह सकते हैं। अगर आप सभी घर गृहस्थ में रह करके भी पवित्र रह सकते हैं तो वो तभी रह सकते हैं जब परमात्मा शक्ति का वरदान मिला है, ऐसे नहीं रह सकते कोई भी। तभी तो लोगों को डाउट आता है, सन्यासियों को भी डाउट आता है कि इतने सारे घर गृहस्थ में रहने वाले पवित्र कैसे रह सकते हैं, हम लोग नहीं रह सकते थे इसीलिए तो हमने घर गृहस्थों को छोड़ा और हम सन्यासी बने। बाबा ने कहा है कि बच्चे आप सबकी पवित्रता ही एक दिन ये बड़े बड़े साधु महात्मा संतों को भी आपके चरणों में गिराएगा। कैसे, यही तो परमात्मा शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज लाखों भाई बहने अगर घर गृहस्थ में रह करके पवित्र बने हैं तो बिना परमात्मा शक्ति के वरदान के नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते। इसीलिए कहा कि दुनिया में कोई आज घर गृहस्थी बनना नहीं चाहता है, सिंगल रहते हैं लेकिन फिर भी पवित्र नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास ये वरदान नहीं है। तभी तो बाबा कहते हैं दुनिया बहुत गंदी है, छीछी दुनिया है, बहुत पतित दुनिया है, और इस पतित दुनिया के अंदर आप पवित्र रह रहे हैं तो यही तो सबसे बड़ी भगवान की शक्ति का प्रमाण है कि नहीं है, है। इसीलिए कोई अगर कहे कि हमें तो भगवान के वरदान का अनुभव नहीं, ये सबसे बड़े वरदान का अनुभव करके देखो। और इसीलिए कहा कि वो पौंड्रे कोई भी गांव में आता है जहां न उस धरनी को सींचा गया है, न वहां उस गृहस्थी में उनके बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, वहां किचन में शुद्धि है, जहाँ पवित्रता का इम्पोर्टेंस ही खत्म कर दिया हो या उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो, उसको भगवान कहा जा सकता है, वो बाबा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए कहा परख शक्ति को अपनाओ कि परमात्मा अभी तक भी वो शक्ति हमें प्रदान कर रहे हैं। आज जो भी ऑनलाइन बाबा के बच्चे बने हैं वो सभी भी सहजता से अगर इस धारणा पर चल सके हैं तो कैसे चल सकते हैं, बिना परमात्मा के वरदान के नहीं चल सकते हैं। तो इसीलिए समझ में आता है कि भगवान ने आज दिन तक मधुबन छोड़ करके और कहीं पर भी नहीं आया। कहने का भाव दादी जानकी ने कहा भी कि बाबा एक बार तो लंदन आओ, बाबा ने कहा मधुबन बनाओ तो जरूर आएंगे। मधुबन बनाओ का मतलब, मधुबन बनाओ का मतलब है कि जिस तरह इस धरनी को इतना सींचा गया है, इतने भाई बहनों का, लाखों भाई बहनों के योग की शक्ति से सींचा गया है, इस वातावरण को पवित्र बनाया गया है, तब भगवान आता है। ऐसे ही सब धरनी पर नहीं आता है, लंदन में बाबा कभी नहीं आए। गुलजार दादी जब गई तो दादी जानकी ने बहुत कोशिश की कि बाबा एक बार लंदन आ जाओ, इस लंदन की भूमि पर आ जाओ। बाबा ने मना कर दिया। ऐसे बाबा सब धरनी पर नहीं आते, पहले मधुबन बनाओ। मधुबन बनाना आसान नहीं है, मधुबन बनाना आसान नहीं है कि हाँ भाई जहाँ बाप बच्चे का मिलन है वो हम मधुबन ही है, ये कह दो और मधुबन बन गया। ऐसे मधुबन नहीं बनता है। इसलिए ये पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि माया यही अपना अंतिम दांव चल रही है और कई ब्राह्मणों को क्या करेगी, थप्पड़ मार के गिरा देंगी। तो उसमें आप ना आ जाओ, ये संभाल करनी है। ये निश्चय का फाउंडेशन अगर कमजोर होगा तो बहुत सहज बह जाएंगे। कल किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि मनुष्य के पास एक सबसे बड़ी ताकत अगर है तो जैसे नदी का बहाव जो होता है उसके विपरीत दिशा में तैरने की ताकत लगा सकता है और फिर भी वो अपने किनारे पर पहुंच सकता है। कितना भी तेज बहाव क्यों ना हो तो भी वो विपरीत दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा में तैर करके भी किनारे पर पहुंच सकता है। ताकत लगानी पड़ती है, जरूर है। बहाव में बहता कौन है, मुर्दा बहता है, लाशें बहती है। तो इसी तरह ये माया के बहाव में बहता कौन है, मुर्दा बहता है। जीवित व्यक्ति नहीं बह सकता है। जिसको होश हो, नशा हो, निशाने पर जाने का एक जुनून हो कि हाँ हमें फरिश्ता बनना है, और निश्चय बुद्धि है जो अपने में आत्मविश्वास को लिए हुए, वो कभी भी मुर्दा नहीं बन सकता है। इसीलिए जो माया के इस बहाव में बहता है तो समझ लेना ये लाश बन गई, ये मर गया, तभी वो बह गया, है ना। बाकी आप सभी नहीं बहना, क्योंकि आप सभी जिंदा हो, समझा ना, जिंदा हो और जिंदा रहना अंत तक, ये बाबा का वरदान है। इसीलिए बाबा इतनी शक्ति भरता है, इतनी सकाश देता है। आज भी बाप दादा दोनों मिलकर के हम बच्चों को अमृत वेले कितनी सकाश देता है, कितनी ताकत भरता है। और इसीलिए तो बाबा कहता है कि बच्चे इस सकाश से ही, इस शक्ति से ही तुम अपने मंजिल को, उस निशाने को सहजता से प्राप्त कर सकेंगे। हमारा निशाना ही है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता यानी सूर्यवंशी, सूर्यवंशी घराने में जाना। जैसे आज बाबा ने कहा ना, 84 जन्म आदि से लेकर लेना, और हम सभी का निशाना यही है कि मैक्सिमम जन्म हम सभी धारण करें, हीरो पार्टधारी बन करके इस ड्रामा के अंदर अपना पार्ट बजाए। दुनिया के लोग इतने थक गए हैं और थकने के कारण वो क्या चाहते हैं, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, बस सारा कल्प ऊपर बैठे रहे, भले एक दो जन्म मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी चलेगा, ऊपर ही बैठना चाहते हैं। और इसीलिए लास्ट में एक दो जन्म के लिए उतरते हैं। लेकिन उससे फायदा क्या, ना कोई प्राप्ति है ना फायदा है। हम सभी बच्चे ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरा 84 जन्म का पाठ बजाने से कितना सुंदर हर दृश्य देखने को हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सौभाग्य मिलना सतयुग के देवी देवताओं के साथ पाठ बजाना, त्रेता युग में राम राज्य में पाठ बजाना, हर एक समय का पाठ न्यारा निराला है। भक्ति का भी पाठ बजाया, खूब भक्ति किया हमने तभी भगवान मिला। वो भी कहते हैं भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा, लेकिन उनको फिर भी नहीं मिलता है और हम लोगों को मिल गया। तो इसीलिए हम सभी ने भक्ति भी अच्छा की है और इसीलिए भगवान का अनुभव भी किया है। तो सारे चक्र के अंदर विभिन्न पाठ हमने बजाए। आप सोचो ये लास्ट जन्म भी हमारा इतना अच्छा है तो द्वापर का पहला जन्म भी कैसा होगा। लास्ट जन्म में, अंतिम जन्म में, पतित दुनिया में भी हमारे पास अच्छी बुद्धि थी जो भगवान को पहचान सके, अच्छा चरित्र बनाया, इतनी ताकत थी, अच्छे बुद्धि, सोचने की शक्ति, मन की शक्ति, ये सब अच्छी अंतिम जन्म में भी इतनी अच्छी है तो सोचो द्वापर के पहले जन्म में भी कैसी होगी, सतयुग के पहले जन्म में भी कैसी होगी। तो इसीलिए कहा कि पूरे चक्र के अंदर पाठ बजाने का जो एक सौभाग्य है, विभिन्न रंग रूप सब कुछ देखा हमने, समय को परिवर्तन होते हुए देखा और अभी भी जो दुनिया के अंदर चल रहा है देखने के बाद सुनने के बाद कोई आश्चर्य नहीं लगता है। दुनिया के लोगों को कितना हाई ऐसा हो गया, अच्छा है हो गया, हर बात में आश्चर्य, और हम लोग सुनते हैं तो उसके बावजूद भी ये तो होना ही था, बाबा ने कहा था। कोई हम बहुत गिरी हुई बातें सुनाते तो भी कहेंगे ये तो होना ही था, ये तो बाबा ने बताया हुआ है, कलयुग है तो यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, है ना। तो आश्चर्य नहीं लगता है, ये है निश्चय बुद्धि कि जहाँ हर बात का जवाब हमारे पास है ही है। इसीलिए बाबा कहे तुम कोई भी माया के बहाव में आकर के बह नहीं सकते हो, माया के विपरीत दिशा में भी चलने की ताकत तुम्हारे अंदर है और ये ताकत अपने निश्चय से आई है। निश्चय बहुत बड़ी ताकत है, चारों ही निश्चय जो है उसमें बहुत बड़ी, एक तो आत्मविश्वास, स्वयं में निश्चय माना, आत्मविश्वास कितना पावरफुल है, जो कैसे भी करके हमारे मन में ये संकल्प नहीं आता है कि पता नहीं अभी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बाबा तो कहता है लेकिन मेरे से तो होगा नहीं शायद, नहीं, बाबा की मुरली सुनते ही हमारे अंदर वो नशा आ जाता, आज बाबा ने कहा ना करके देखते हैं, आज बाबा ने कहा करके देखते हैं। देखो एक बात मैं कहूँ आज आपको, बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ये मुरली 5 साल का स्टॉक है, साकार मुरली का 5 साल का स्टॉक है हमारे पास। ये मुरली कितनी बार चल चुकी है, राजू भाई से पूछा कितनी बार मुरली चली साकार बाबा जाने के बाद, कहा 11वीं बार चल रही है, 11वीं बार चल रही है। जो पुराने हैं 11 बार तो सुना है, अच्छा 11 बार नहीं तो भी 5-6 बार तो सुना है, जो पीछे भी आए हैं तो 5-6 बार तो सुना है। आज अगर आप अपने बच्चे को कोई बात का गाइडेंस देना चाहो लौकिक में, या आपका पिताजी आपको कोई बात का गाइडेंस देना चाहते हैं कि बेटा हमारे अनुभव ये है और हम अपने अनुभव से तुमको बता रहे हैं कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, वे करो, तो बच्चे भी क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, बाबा अपने पिताजी को क्या कहते हैं, पिताजी ये आपके समय की बात थी, आज का जमाना बदल गया, आज वो जमाने की बातें आप अगर कितना भी अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे लेकिन आज के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, नहीं चल सकता है, वो अनुभव काम नहीं कर सकता, कहते हैं ना, कहते हैं ना बच्चे आज के। लेकिन बाबा हम बच्चों को समझाते हैं 60 साल पहले जो मुरली चलाई है आज भी जब सुनते हैं तो आज भी कोई भी बच्चा ये नहीं कहता है कि बाबा आज की दुनिया में ये संभव नहीं है, आपके समय में संभव थी, आज के युग में ये संभव नहीं कहता है कोई। आज भी वो 60 साल पहले वाली शिक्षाएं आज भी इतनी ही उपयोगी सिद्ध होती है कि बाबा ने ये बात कही मुरली में और हमने ट्राई किया और ट्राई करके हमने अनुभव कर लिया, कहते हैं ना। अच्छा, कोई बात का प्रश्न उत्पन्न होता है, दूसरे दिन मुरली में उसका जवाब मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं मिलता है? और जब मिल जाता है और वैसे ही करते हैं तो रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है? रिजल्ट भी मिल जाता है। तो परमात्मा ज्ञान हमें जो दे रहा है उसका प्रमाण, भगवान का ज्ञान है उसका प्रमाण क्या कि 60 साल के बाद भी वो बातें एवर ग्रीन है, हर आयु वालों के लिए उपयोगी है, हर एक व्यक्ति के लिए ये प्रैक्टिकल है। कोई नहीं कहेगा बाबा आपकी बातें प्रैक्टिकल नहीं है, आपके जमाने में वो बात थी, आज के जमाने में ये बात एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कोई भी कहेगा बाबा की मुरली सुन करके? नहीं, आज भी ऐसा लगता है कि वही बातें जैसे हो रही है। 60 साल पहले कही थी, उस समय शायद नहीं भी हुई हो, लेकिन आज हो रही है। बाबा ने कहा था थोड़े हंगामे और बढ़ने दो, फिर देखो सब वृद्धि कैसे। और एक कोरोना क्या आया, कितनी वृद्धि हो गई सब सेंटरों पर, ऑनलाइन बच्चे कितने हो गए, ऑनलाइन कोर्स करने वाले कितने निकले, बहुत। तो कैसे बाबा की 60 साल पहले कही हुई बात भी आज एवरग्रीन है या नहीं है? इसीलिए बाबा की हर बात पर निश्चय, हर बात में निश्चय कि वो सदा के लिए एवरग्रीन है, ये कोई बच्चा नहीं कह सकता कि बाबा आपकी मुरली आज के युग में एप्लीकेबल नहीं है। है, रिजल्ट मिलता है। और बहुत अच्छा, अगर कितना भी कोई कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को बाबा दूर कर देता है दूसरे दिन की मुरली में उसका जवाब दे करके। कई भाई बहने सुनाते अनुभव, अरे इतना कंफ्यूजन था, हम सोच समझ नहीं पा रहे थे, ये करे ऐसा करे वैसा करे, इतनी दुविधा अंदर चल रही थी, लेकिन बाबा ने आज सारी बात क्लियर कर दी। है कि नहीं अनुभव? है, सभी को है। यही तो परमात्मा ज्ञान की शक्ति है, यही परमात्मा ज्ञान की शक्ति है कि इतना क्लियर आज भी उसका अनुभव होता है। बाबा ने 12 तारीख की मुरली में बहुत अच्छी बात ये बताई है कि ये मधुबन की धरनी को वरदान है, एक तो बाबा से मिलन का अनुभव कराने की, जो हर एक बच्चे आज भट्टी में भी अनुभव करते कि जैसे बहुत अच्छा योग लगा संगठन में, ऐसा योग वहां नहीं लगता है घर में जो यहाँ लगा। दूसरी बात कि जो सहज योग का योग में बाबा से मिलन मनाने बैठेंगे तो अव्यक्ति मिलन का भी सहज अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने ये वरदान दिया है और कहा ये मधुबन की धरनी को ही वरदान है। इसीलिए यहाँ आते हैं तो आज की साकार मुरली में भी बाबा ने क्या कहा, यहाँ आते हैं तो इसका पूरा लाभ लो। अगर ये सोचते अंबाजी घूमने जाएं, वहां घूमने जाएं, वहां घूम, तो जो लाभ लेना चाहिए इस धरनी का वो लाभ नहीं उठा सकते हैं। अरे घूमने का काम तो आप करते ही रहे हैं, यहाँ आकर के इस धरनी का लाभ नहीं लिया। देखो बाबा के 60 साल पहले कहे हुए महावाक्य आज भी एवरग्रीन, कि यहाँ आकर के इस धरनी का लाभ नहीं लिया तो कब लेंगे? इसलिए बाबा समझते हैं ये बच्चे ने कुछ समझा ही नहीं है। अरे बाबा यहाँ इस धरनी को वरदान है सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने की। कई भाई बहने कहते हैं मुझे, अरे आज ही हमने सोचा बहन जी आपसे मिलना है और आप सामने आ गए। है कि नहीं अनुभव? मिलना चाहते, कोई भी संकल्प करो जैसे बाबा पूरा कर देते, कोई भी संकल्प करो बाबा पूरा कर देते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर बुद्धि बाहर भटकती रहे तो उसको निश्चय बुद्धि कहेंगे? ये निश्चय बुद्धि है नहीं है, तभी बुद्धि बाहर भटकती है। इसीलिए बाबा कहे ऐसे निश्चय बुद्धि कि अपने निशाने के सिवाय मुझे और कुछ याद नहीं रहे और कुछ दिखाई न दे, यहाँ वहाँ मुझे कहीं देखना नहीं है, मैं और मेरा बाबा क्योंकि अब अगर ये लाभ नहीं लिया तो ये समय भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। अभी तो फिर भी बाबा की मदद का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक बार विनाश लीला आरंभ होगी तो ये समय भी बीत जाएगा और बाबा बाप के बदले धर्मराज का रूप ले लेगा, फिर बाबा भी मदद नहीं कर पाएगा। उस समय आप सोचेंगे कि भाई हमारे कई बार आए लेकिन क्या करें, उस समय घूमने चले गए, यहाँ चले गए वहां, तो जो लाभ लेना चाहिए वो तो नहीं लिया, तो पश्चाताप होगा कि नहीं होगा। लगातार बाबा की मुरली 3-4 दिनों से निश्चय को लेकर के कितनी पावरफुल चलती रही है, सोचो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे निश्चय बुद्धि बन करके उस निशाने पर ही अपनी दृष्टि को रखो कि मैंने ये ब्राह्मण जीवन लिया तो क्यों लिया, ये स्पष्ट अपने सामने क्लीन और क्लियर हो, बुद्धि इतनी स्वच्छ हो जो क्लियर उस निशाने को देख सके कि हाँ मुझे यही समय में यही जीवन में उस निशाने तक पहुंचना है, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप इस निशाने तक पहुंचना है। और उसके लिए जो बूस्टर का काम करता है वह है नशा। नशा जितना होगा बूस्टर का काम करेगा, उड़ेगा, जितना ऊंचा उड़ान भरना चाहो उड़ सकते हो और उस मंजिल को पहुंच सकते हो। बाबा ने 12 तारीख की मुरली में यही बात कही कि अभी तक भी फाइनल समाप्ति का बुगल नहीं बजा है, एक बार बुगल बज जाएगा फिर बाबा मदद नहीं करेगा। अभी तक समाप्ति का बुगल नहीं बजा है इसलिए बाबा फिर भी सूक्ष्म में मदद कर रहा है। तो निश्चय बुद्धि होकर के नशे में आकर के वो नशा ही हमारे लिए बूस्टर है जो उस निशाने तक हमें सहजता से पहुंचा देगा। लेकिन हमें माया के अनेक रंगीन बहावों में बहना नहीं है, बहना नहीं है। कोई कितना भी कुछ भी कहे, अरे वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ बाबा आता है, वहाँ मम्मा आती है, वहाँ दादी आती है, देखो एकदम दादी जैसा आवाज है, ये सब पौंडरिक है। ये पौंडरिक की कथा सामने ले आओ और ये सब पौंडरिक है, ये समझते हुए आप अपने निश्चय में कमजोर नहीं होना है, ठीक है ना। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय हार में भी विजय का अनुभव, विजय में भी विजय का अनुभव, जीत में जीत का अनुभव तो है लेकिन हार में भी जीत का अनुभव। चाहे सारे लोग आपके आसपास वाले कहे नहीं नहीं वहां जाओ वहां जाओ वहां, आप अपने निश्चय बुद्धि वो कहेंगे ये तो हारा हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी विजय निश्चित है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती अर्थात हर बात में वो विजय का अनुभव करते हुए, सफलता का अनुभव करते हुए संपूर्ण सिद्धि को सहजता से प्राप्त कर लेंगे। ये अनुभव करना है, संपूर्ण सिद्धि को जीवन के अंदर अनुभव करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, ये चारों फाउंडेशन को बहुत पक्का करना है। निश्चय के फाउंडेशन को डबल अंडरलाइन करना है क्योंकि माया उसी को हिलाने का प्रयत्न बड़े सूक्ष्म स्वरूप से करती है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।